તારીખ 27/11/1997 શ્રી સમયસર ગાથા 156 તથા શ્લોક 108 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સંત પ્રવચન નંબર 153
શ્રી સમયસર પરમાનંદ પુણ્ય પાપ અધિકાર ગાથા 156 इस गाथा में परमार्थ मोक्ष मार्ग मोक्ष कारण से अन्य जो कर्म शुभ अशुभ किसी भी प्रकार का उनका निषेध करते हैं। परमार्थ माने वास्तविक मोक्ष का जो कारण है, ऐसे जीव के शुद्ध परिणाम हैं। इससे अन्य जाति का अन्य प्रकार का जो भी भाव कर्म है, जो भी जीव के भाव हैं, वो भाव कर्म है, उनका निषेध है। इससे मोक्ष मार्ग नहीं होता। गाथार्थ है, निश्चय नहीं के विषय को छोड़कर विद्वान व्यवहार के द्वारा प्रवर्तते हैं। जो शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे विद्वान भी पुण्य भाव का शुभ भाव का पक्षपात होने से, शास्त्र पढ़ने वाले लोग भी निश्चय नहीं के विषय को छोड़ करके व्यवहार में प्रवृत्ति करने लगते हैं। व्यवहार में प्रवृत्ति करने लगते हैं तो क्या होता है कि क्रियाकांड में चले जाते हैं। कोई पूजा भक्ति के क्रियाकांड में चले जाते हैं तो कोई व्रत उपवास के क्रियाकांड में चले जाते हैं। व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन करने में यह स्थिति आ जाती है। जब तत्व दृष्टि गौण हो जाती है, तत्व का अभ्यास भी कम हो जाता है, तो सामाजिक परिस्थिति बहुभाग क्रियाकांड वाली हो जाती है। परंतु परमार्थ के आश्रित यतीश्वरों के ही कर्मों का नाश आगम में कहा गया है। परमार्थ मैंने यहाँ आत्मा का परम स्वरूप, आत्मस्वरूप, उसको यहाँ परमार्थ कहते हैं। कि परमार्थ आश्रित मैंने आत्मस्वरूप के आश्रित यतीश्वरों के ही ऐसे इसको यति बोल दिया। जो स्वरूप का आश्रय करते हैं उसको कहते हैं कि वे यति हैं, वे योगी हैं। गृहस्थी में है ना, तो कि गृहस्थी में होने के बावजूद भी वो योगी है। यतीश्वरों के ही कर्मों का नाश आगम में कहा गया है। आगम में कहा गया है कि उनका कर्म का नाश हो जाएगा, वो निष्कर्म ऐसी मोक्ष दशा को प्राप्त हो जाएगा। जो आत्मस्वरूप का आश्रय करेगा उसका मोक्ष होगा, दूसरा किसी का भी कुछ भी करने वाले का भी मोक्ष नहीं हो सकता। पढ़ते भी है, समझते भी हैं, लेकिन मुख्यतः व्यवहार की छूटती नहीं।
शास्त्र का आदेश तो अलग है, शास्त्र का आदेश तो अलग है और
आदेश ऐसे बात तो व्यवहार निश्चय दोनों की चलती है। जीवाणी में दोनों नहीं कोई बात चलेगी, तो जिसका जहाँ वजन है, पक्ष है, उनको वो पकड़ेगा कि देखो हमारी बात तो है शास्त्र में, इसलिए हम करते हैं।
ऐसे भूल हो जाती है।
हाँ, बाना तो ऐसे पकड़ेंगे, कोई ना कोई बाना तो ऐसे पकड़ेंगे। लेकिन मोक्ष का कारण के परिणाम में उसको कभी लिया ही नहीं व्यवहार को। मोक्ष का कारण में तो स्वरूप आश्रित परिणाम को ही मोक्ष का कारण लिया है सर्वत्र। कहीं भी पुण्य परिणाम को मोक्ष का कारण में लेने में नहीं आया है, ये बात तो साफ है।
गुरुदेव से पोत्रा कांडे कांडे बोलते हैं।
हाँ, आज तो हमारे समाज में भी बड़े बड़े पूजन विधान चलने लग गए हैं, बड़े बड़े पूजन विधान लगाते हैं। दूसरे क्रियाकांड में अभी नहीं उलझे हैं, लेकिन पूजन विधान में तो हम भी आ गए हैं। जितना महत्व पूजन विधान का हमारे यहाँ है, उतना महत्व शास्त्र स्वाध्याय का देखा नहीं जाता। वो बात तो प्रत्यक्ष है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे श्री गुरु की आगम की और जिनेन्द्र देव की आज्ञा पे चलना चाहते नहीं है। हमको जो अच्छा लगे ऐसा हम करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं, वो बात हमको मंजूर नहीं है। ये इसका मतलब हो गया।
कृपा देव के पत्रों के महात्मा वगैरह का जो संबोधन आता है, अगर वो महात्मा तो नहीं, यहाँ पर भी मूड नहीं करने से विद्वान कहा था, दोनों की सिली।
खास करके धर्म के क्षेत्र में आने वाले ऐसी भूल करते हैं, जो दूसरों को पता नहीं है, समझ नहीं है, वो भूल करे तो उसका उतना, वो तो क्षम्य है। इनका इनका जो अपराध है वो क्षम्य है, लेकिन जो जान बुझ करके अपराध करते हैं वो अपराध अक्षम्य है। क्षम्य नहीं है किंतु अक्षम्य है, ऐसी बात हो जाती है। तो यहाँ तो इनको उपदेश दिया है, उन लोगों को उपदेश नहीं दिया है जो धंधे व्यापार गृहस्थी में फंसे हैं। इस बात को सुनने को भी जिसको समय नहीं है, उनको तो उपदेश ही नहीं दिया है, क्योंकि वो सुनने को आते नहीं, उनको क्या कहना। अब जो पढ़ता है सुनता है उसको कहते हैं। वो हित के लिए है या अहित के लिए है, किसके लिए है? जो सुनना पड़ता है वो किसके लिए है? हाँ, वो गालियां नहीं है, वास्तव में तो अमृत है।
अमृत है
क्या?
अमृत है।
ये शादी वगैरह में गालियां देते कि नहीं देते? गालियां की बात करते हैं तो अभी देखो, शादी वगैरह में गालियां देते कि नहीं देते? तो क्या है उसमें, वो गर्म हो जाता है क्या, गुस्सा आता है?
नहीं।
उसको बुरा लगता है क्या?
नहीं लगता है।
अच्छा लगता है,
अच्छा लगता है।
देखो हमारा नाम लेकर के ऐसा बोलते हैं, वहाँ तो अच्छा अभिप्राय दूसरा है, तो वहाँ गालियां सुनने को भी राजी होता है। यहाँ भी अभिप्राय ठीक करे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। अगर अपना हित का अभिप्राय ले ले तो बुरा नहीं लगेगा। लगेगा क्या
है? मूड संबोधन किया विद्वान है, मूड।
हाँ, मूड है
क्या विद्वान?
निश्चय नहीं को छोड़ करके जो व्यवहार द्वारा प्रवर्तते हैं ये मूड है। फिर भी बोला कि ये विद्वान है, फिर भी ऐसा गलती करता है, ऐसे बात है। ऐसा भगवान के आगम में कहा गया है, केवल व्यवहार में प्रवर्तन करने वाले पंडितों के कर्म क्षय नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो उनका कर्म क्षय नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य ऐसे हैं। कैसे क्रियाकांड है व्यवहार के, जो परमार्थ मोक्ष हेतु से दूसरे प्रकार के हैं, ऐसे व्रत शुभभाव रूप, तप शुभभाव रूप इत्यादि इत्यादि में पूजा भक्ति यात्रा सब कुछ ले लेना। शुभ कर्म स्वरूप मोक्ष हेतु मानते हैं, उसको कुछ न कुछ आत्म कल्याण उसमें दिखता है कि कुछ तो मेरा लाभ होता है उसमें, उसको मोक्ष हेतु यहाँ कहने में आया है। उस समस्त ही का निषेध किया गया है, कुछ अपवाद छोड़ करके निषेध नहीं किया, समस्त का निषेध कर दिया है। भक्ति का भाव जोर देते थे लेकिन सुहराग का जोर नहीं देते थे, वो ज्ञान कराने के लिए बात थी। कि सत्पुरुष की भक्ति, तुम भक्ति में रह करके, चरण में रह करके तुझे ज्ञानार्जन करना है। क्या ज्ञानार्जन करने में विनय भक्ति नहीं होगी तो ज्ञानार्जन नहीं होगा, उतनी बात है। तो ये बहुमान कराने की बात है, और बहुमान में राग की नहीं प्रधानता, बहुमान में ज्ञान की प्रधानता है। क्योंकि जो सत्पुरुष को पहचानेगा उसको बहुमान आएगा। तो पहचान का कार्य ज्ञान में होता है कि राग में होता है? तो भक्ति वास्तव में ज्ञान की पर्याय है, राग की नहीं। हम समझ बैठे कि राग की पर्याय है, इसलिए तो आत्मा जागृति में भक्ति का प्रकरण लिया है, यही कारण से लिया है कि वास्तव में वो ज्ञान के पर्याय है, राग के पर्याय नहीं गिननी चाहिए। राग होता है साथ साथ में, लेकिन राग गौण है, ज्ञान मुख्य है, ऐसी बात है। जैसे अपनी आत्मा की महिमा आती है, दृष्टांत ले ले, जैसे स्वरूप की पहचान होती है तो बहुत महिमा आती है, क्योंकि स्वरूप महिमावंत है, अनंत महिमावंत स्वरूप होने से उसकी महिमा भी बहुत आती है, जिसको पहचान होती है। तो पहचान काय से हुई? ज्ञान से हुई कि राग से हुई? ज्ञान से हुई। तो पहचान में जो महिमा आई, उसमें बाह्य दृष्टि वाले का तो राग दिखेगा कि बहुत आत्मा की प्रशंसा करते, कि बहुत आत्मा की महिमा गाते हैं, राग दिखेगा। लेकिन वास्तव में उसका आधार तो ज्ञान है, राग तो ज्ञान के पीछे पीछे चलता है। क्या होता है, दो मित्र होते हैं, तो जो मित्र बलवान होते हैं ऐसा दूसरा का असर, दूसरे पर असर आता है। जैसे कि एक गुणवान है एक अवगुणी, दो मित्र है। अगर गुणवान बलवान होगा तो अवगुणी का अवगुण छूट जाएगा, वो भी गुणवान हो जाएगा। और अगर गुणवान कमजोर होगा और अवगुणी बलवान होगा तो ये अवगुणी हो जाएगा, गुणवान नहीं रहेगा। ऐसे राग और ज्ञान दोनों साथ में परिणमन करते हैं। जीव के दो गुण है प्रमुख, चारित्र गुण में राग और ज्ञान गुण में ज्ञान। जिसका ज्ञान विवेक बलवान है तो राग को इसके पीछे चलना पड़ता है। क्या? ज्ञान ने आत्मा को पहचाना, सत्पुरुष को पहचाना, और उसकी कीमत आई, ज्ञान में मूल्यांकन हुआ, तो राग भी उसको उसका अनुसरण करने, वो भी महिमा करने लगता है। यद्यपि राग का स्वभाव तो आत्मा से विरुद्ध जाने का है, वो तो आत्मा का दुश्मन है, अवगुणी है। राग तो अवगुणी है, फिर भी ज्ञान बलवान जिसका होता है तो इसका राग भी इसके पीछे पीछे घसीट करके जाता है,
राग भी बलवान हो जाता है, राग भी बलवान हो जाता है।
राग को भी गुण गाना पड़ता है, राग को भी सत्पुरुष का गुण गाना पड़ता है, आत्मा का गुण गाना पड़ता है। फिर जिसका राग बलवान होगा तो ज्ञान भी इसके पीछे चला जाएगा। ज्ञानी महाज्ञानी थे, भगवान के गणधर थे, गौतम स्वामी भगवान के गणधर थे, तो ज्ञानी नहीं थे किंतु महाज्ञानी थे वो। तो फिर राग आया ही नहीं था, किसने बोला? अच्छा। उनको राग आया ही नहीं था, बोला ही नहीं, वैराग हुआ था। कब की बात करते हो, कब राग हुआ था गौतम स्वामी को, कब राग हुआ था बताइए?
उसके लिए उसको भेजना पड़ा, उसको देते नहीं। हमारे सामने लगा कि गौतम स्वामी मेरा ध्यान कमरे को देख नहीं सकेगा, उस वजह से उसको भेज दिया उधर, देव समान उद्देश्य।
कोई गलत बात है सब। भगवान का देहांत हुआ तो वैराग्य में आ गए और अपने स्वरूप में लीन हो करके भगवान सुबह निर्वाण को पधारे तो गौतम स्वामी मोक्ष में, केवल ज्ञान में पहुंच गए, मोक्ष में आ गए। अगर वो राग द्वेष वाले होते तो उसका केवल ज्ञान होता नहीं, है मुनिपद भी छूट जाएगा। तो ऐसा राग होए तो मुनिपद नहीं रहता, मुनि दशा में कितना राग द्वेष रहता है वो ऐसे शास्त्र लिखने वाले को पता नहीं है, अपनी कल्पना से शास्त्र बना लेते हैं। ये गड़बड़ वाली बात है।
मुनि को तो आते
हैं नहीं, नहीं होता ही नहीं, उनका योग छूटा सुनने का, तो योग छूटा तो लगे यही संसार की स्थिति है। देखो तीर्थंकर जैसे महापुरुष के संग थे वो भी छूट गया, अब किससे राग द्वेष करना। ऐसे तीर्थंकर के समीप वर्ते वो थे, इनके समीप वाला संयोग भी छूट गया, अब किसी के सामने देखना है, वो सीधे अंतर में चले गए। शुक्ल ध्यान के श्रेणी लगा करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया, कोई रोया नहीं है, लाते ने रोने लगे थे, ऐसा हुआ था वैसे। ठाकुर मुनि रोता है कभी?
तो अभी में हो जो
वो भी नहीं रोता,
भाव होता ही नहीं,
इतना अशुभ भाव मुनि को कभी होता ही नहीं है। और भगवान नहीं जानते कि मुनि कैसे होते हैं, तो उनको बाहर भेज दे, जैसे लड़के को भेज दे, चल तुम खोलने को चला जा, खुद राग द्वेषी होते हैं। तो शास्त्र भी रागी द्वेषी का लिख लेते हैं, बना लेते हैं, बिल्कुल कल्पो कपोल कल्पित है। चौथा गुण स्थान कैसा है इसका भान मान नहीं है, फिर छठा सातवा कैसा होगा इसकी तो कल्पना भी उसको आ सकती नहीं है, ऐसी बात है। एक अंतर मुहूर्त में सेकंडों में वो लीन हो जाते हैं स्वरूप में, क्या चाहे चलते चलते हो तो भी अंतर में लीन हो जाते हैं, खाते खाते हो तो भी अंतर में लीन हो जाते हैं, और उपदेश देते देते भी अंतर में लीन हो जाते हैं। ऐसी जिनकी उत्कृष्ट परिणति होती है वो मुनिराज है, जिसको इंद्र आकर के बंधन करते हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है वो। और नमो लोये सब सावणम, ये गणधर देव बोलते हैं,
नमस्कार करते हैं
तो किसको नमस्कार करते हैं गणधर देव? ऐसे आली दुवाली को नमस्कार करता है गणधर देव है, जो महान आत्मा है उनको नमस्कार करते हैं।
आज तो नेव बरसे ये कंचन करता है गणधर,
तत्व केवली गम्य है ऐसा सर्वथा नहीं है, चतुर्थ गुण स्थान में भी आत्मा का आत्म तत्व का अनुभव होता है। अध्यात्म का मार्ग बुद्धि गम्य है, केवली गम्य तो ये करुणानुयोग का विषय है परमाणु का, आत्मा तो प्रत्यक्ष होता है अनुभव में, केवली गम्य क्यों हो गए? तत्व कौन सा तत्व, मतलब तत्व माने क्या, किस किसको तत्व कहते हैं? तत्व में आत्म तत्व प्रधान है, तत्व में अध्यात्म तत्व ही तत्व है, क्या
अध्यात्म तत्व ही तत्व है,
तत्व में अध्यात्म तत्व ही तत्व है। और ये चतुर्थ गुण स्थान में अब भी हो प्रत्यक्ष हो सकता है, ये सब गड़बड़ वाले वाली बात है। जिसको ऐसा अनुभव नहीं है वो फिर लगा देते हैं कि वो केवली में, चलो जाओ केवली के में, अब तो अपना जितना गप्पा लगाना उतना लगाओ, क्यों कि मूल तत्व तो केवली गम्य है, अपन तो लगाओ इसके बारे में जितना गप्पा लगाना हो, ऐसा नहीं चलता।
जिसके नैन ही नहीं हो नैन की बात काटे दे
हैं,
जिसके नैन नहीं है वो नैन की बात,
जो अंधा है जिसको नैन नहीं है वो नैन की बात कहां से करेगा, सिर्फ ठीक बात है। बारंग का सार उसके हाथ में है, जो न्याय बारंग वाला निकाल सकता है वो चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि भी निकाल सकता है। आया कि नहीं परमागम सार, गुरुदेव ने बोला कि नहीं? और गुरुदेव तो इसका सबूत है, अपने गुरुदेव तो इसका सबूत है कि वो उनकी पढ़ाई तो बहुत कम थी, सात गुजराती, कितना उस वक्त तो सात गुजराती का स्कूल पूरा हो जाता है, और फिर अपने अपने काम धंधे में लग जाते सब जो पढ़ने वाले थे। गुरुदेव ने इतने शास्त्र पढ़े, इतने न्याय निकाले, कहां से निकाले?
आत्मा में से, ठीक बात
है। बड़े बड़े पंडित शास्त्र पढ़ने वाले भी
कुछ बात नहीं कर
पाते, खड़े रह जाते थे कि क्या कहते हैं स्वामी जी, ऐसी बात है। उस जमाने में इंदौर से वो आए थे सर हुकमचंद जी, बड़े अपने पंडितों की मंडली लेके आए थे, पंडितों की मंडली लेके आए थे। हमने देखा कि स्वामी जी का दृष्टि उपादान प्रधान है, हमारा लोगों की दृष्टि राग प्रधान और निमित्त प्रधान है। तो कोई पंडित बीच में बोलने जाते थे तो उनको रोकते थे, सुनो तुम स्वामी जी क्या कहते, पहले तुम सुनो फिर सुन करके बात करना, ऐसी बात नहीं है, तुमने समझी अब तक ऐसी बात
नहीं
है, दूसरी बात है, ऐसा कहते थे। अनुभव की बात करते हैं, शास्त्र में बात लिमिटेड आती है और अनुभव में इससे आगे की बात आती है, खोल करके कहते हैं, शास्त्र की बात अनुभव से खोल करके कहते थे, ऐसी बात थी। हमको आत्मा बोलने का, आत्मा शब्द बोलने का भी गुरुदेव ने सिखाया है, हम क्या जानते थे, हम कुछ जानते नहीं थे। उस समस्त ही का निषेध किया गया है क्योंकि वह मोक्ष हेतु अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है, क्योंकि वह मोक्ष हेतु मोक्ष के कारण से देखे तो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला मैंने पुद्गल स्वभाव वाला है। कौन? पुण्य और पाप दोनों परिणाम का स्वभाव पुद्गल स्वभाव के साथ मेल खाता है, आत्म स्वभाव के साथ मेल नहीं खाता है, और इससे पूर्व पुद्गल का बंध होता है, पुद्गल की प्राप्ति होती है, पुद्गल का संयोग होता है,
पुद्गल जाति का है,
क्योंकि ये पुद्गल जाति का है, इसलिए उसके स्वभाव से ज्ञान का भवन होना नहीं बनता, ये साधन हो और ज्ञान साध्य हो ऐसा
नहीं
बन सकता। मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्य के स्वभाव वाला जीव स्वभाव वाला है, परमार्थ मोक्ष हेतु कि जो आत्मा आश्रय है, आत्मा का आश्रय करके जो परिणाम होते हैं वो वास्तविक मोक्ष का हेतु माने कारण है, और ये जीव द्रव्य के स्वभाव वाला है, जैसा जीव द्रव्य का स्वभाव है उसका साथ उसका मेल है, उसके साथ उसकी सुसंगतता है। पुण्य पाप के परिणाम को आत्म स्वभाव से विसंगतता है, सुसंगतता बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसके स्वभाव के द्वारा ज्ञान का भवन होना बनता है। इसलिए स्वस्वभाव वाला जीव स्वभाव वाला है, इसलिए इसके द्वारा ज्ञान का भवन, ज्ञान का भवन, ज्ञान का भवन लेते हैं, 155 में लिया ना ज्ञान का भवन,
ज्ञान का भवन,
ज्ञान का भवन लेते हैं कि इसके द्वारा ज्ञान का भवन होते है, मैंने शुद्ध परिणमन होता है, जैसा आत्मा है ऐसा स्वभाव रूप परिणमन उसको ज्ञान का भवन कहने में आता है। परमार्थ मोक्ष हेतु, परमार्थ मोक्ष का कारण कौन है कि जो ध्रुव का आश्रय लेता है, परमात्म द्रव्य का आश्रय लेता है, यही परमार्थ मोक्ष का हेतु है, दूसरे कोई परिणाम मोक्ष का हेतु नहीं हो सकता। भावार्थ, क्योंकि आत्मा का मोक्ष होता है इसलिए उसका कारण भी आत्म स्वभाव ही होना चाहिए। क्या न्याय निकाला कि जब वो आत्मा का मोक्ष होता है तो उसका कारण उसके साथ सुसंगत होवे या उसके साथ विसंगत होवे?
सुसंगत होवे।
वितराग मार्ग बोला इसलिए तो इसका मोक्ष हेतु को क्या बोला, राग मार्ग नहीं बोला, क्रियाकांड मार्ग नहीं बोला, पूजा भक्ति मार्ग नहीं बोला, उसको वितराग मार्ग बोला है, क्योंकि मोक्ष वितराग भाव है तो उसका कारण भी वितराग भाव ही होना चाहिए। क्योंकि आत्मा का मोक्ष होता है इसलिए उसका कारण भी आत्म स्वभावी ही होना चाहिए, मोक्ष तो आत्मा का होता है, तो आत्मा का मोक्ष होता है तो आत्मा का अनुसरण करने वाले परिणाम मोक्ष का कारण बने, या राग का या अन्य द्रव्य का अनुसरण करने वाले परिणाम मोक्ष का कारण बने? आत्म स्वभाव को अनुसरण करेंगे वही मोक्ष का हेतु हो सकता है। इसको आत्म स्वभावी परिणाम कहा। मोक्ष मार्ग के परिणाम को क्या बोला इधर? आत्म स्वभावी परिणाम। राग है वो आत्म स्वभावी नहीं है,
विरोध स्वभावी है,
वो घातक है आत्मा के स्वभाव का, वो घातक है, बलवान हो जाता है तो स्वाभाविक स्वभावी भाव को उत्पन्न होने देता नहीं, घातक मैंने उत्पन्न नहीं होने देता। आश्रय त्रिकाली आत्म स्वभाव का लेना चाहिए, उसी से शुद्ध भाव होता है। शुद्ध भाव में वृक्षायिक भाव कभी होता है, कभी उपशम होता है, कभी क्षोपशम होता है, तीन भेद है उसका। जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है उससे आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है? प्रश्न पूछा जोर से निषेध करने के लिए कि जो पुद्गल स्वभाव वाला है, द्रव से अन्य स्वभाव वाला है, अन्य द्रव के स्वभाव वाला है, अन्य मैंने पुद्गल, उससे आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है? कि हो सकता
नहीं।
लेकिन हम भगवान की पूजा करते हैं, वहां पुद्गल का आश्रय कहाँ आया है? तो यहाँ पुद्गल शब्द नहीं लिया है, अन्य द्रव लिया है। क्या ये कहेंगे कि पुद्गल राग होता है? जरूर, लेकिन हम तो वहाँ पुद्गल का आश्रय नहीं करते, हम तो भगवान के गुणानुवाद करते हैं पूजा भक्ति में। क्या करते हैं? गुणानुवाद करते हैं, तो उसमें पुद्गल का आश्रय तो नहीं होता, तो अन्य द्रव्य का तो होता है कि नहीं है?
द्रव्य का होता है।
तो जो भी अन्य द्रव्य है, चाहे भगवान हो तो भी हमारे जीव के लिए तो अन्य द्रव्य मैंने अजीव ही है। हम जीव हैं और वे अजीव है, गुरुदेव कहते थे प्रवचन में, उसको अजीव कहते थे। हम जीव और हमारे जीव की अपेक्षा से वो अजीव। हम स्वद्रव्य और ये परद्रव्य। स्वद्रव्य अपना आत्मा, बाकी के सभी आत्मा परद्रव्य हैं। तो उसके आश्रय से मोक्ष कैसे हो सकता है? और वो भी ऐसे ही कहते हैं भगवान, देव, गुरु, सतपुरुष क्या कहेंगे कि हम तो तेरे लिए परद्रव्य है, हमारा आश्रय करने के लिए हमने कभी बोला नहीं है। देख हमारा स्वरूप ही अंतर्मुख होने का है, ऐसा दिखाव है, अंतर्मुख हो गए हैं तो बोध मिलता है कि तुम भी अंतर्मुख हो जा। उतना ही नहीं, तेरा स्वभाव भी परिपूर्ण अंतर्मुख होने का ही तेरा स्वभाव है, बहिर्मुख होने का स्वभाव नहीं जीव का। अंतत्व स्वरूप है, निर्विकल्प है, इसका मतलब है कि परिपूर्ण अंतर्मुखी स्वभाव है। जो परिपूर्ण अंतर्मुखी स्वभाव है उसको बहिर्मुख होना यही विभाव है, तो उसको छुड़ाया है। अब कहते हैं कि शुभ कर्म पुद्गल स्वभाव वाले हैं। कैसे हैं शुभ कर्म? अशुभ की तो चर्चा ही नहीं करते इधर आचार्य महाराज। क्यों? कि जो सुनने को आया है वो तो अशुभ भाव वाला है ही नहीं, ऐसे शिष्य को लिया है। अभी जैसे है ऐसे इसकी बात नहीं किया है। जो अशुभ में भी हित मानता है, अब में सुख मिलता है, उसका निषेध नहीं आता है। अशुभ का होगा दूसरी बात है, होगा सही मुमुक्षु की भूमिका में या पंचम गुण स्थान तक अशुभ भाव हो सकता है, लेकिन सही मुमुक्षु के सच्चा मुमुक्षु को लेकर के पंचम गुण स्थान वाले को ये होने वाले अशुभ भाव का निषेध आए बिना नहीं रहता। तो जिसको निषेध नहीं आता उसको खुशी होती है, आनंद होता है, मजा आता है, चलो आज तो मिठाई खाने के मिल गई। तो उनको जो भी पंचेंद्रिय का विषय है वो अशुभ भाव है, उसमें उसको जिसको सुख लगता है, सुख आता है और निषेध नहीं आता है, वो तो समाचार पढ़ने का अधिकारी या सुनने का अधिकारी नहीं है, उनको तो आचार्य महाराज उन्हें नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ अशुभ की चर्चा नहीं आई, यहाँ तो आचार्य मेरे महाराज लिखते कि शुभ कर्म शुभ भाव वो पुद्गल स्वभाव वाले हैं, इसलिए उनके भवन से परमार्थ आत्मा का भवन नहीं बन सकता, भवन मैंने परिणमन। तो ऐसा शुभ भाव के परिणमन कारण हुए और आत्म स्वभाव का परिणमन कार्य हुए ऐसा बनता नहीं। पुण्य कारण और धर्म कार्य ये भी नहीं है। पुण्य स्वयं तो धर्म है ही नहीं है, किंतु धर्म का कारण भी है ही नहीं, ये बात लेना है। पाप की तो चर्चा ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो वो चर्चा करने का समय नहीं है, आचार्य महाराज के पास ऐसा समय नहीं है। इसको तो बोलता है कि तुम्हारा तो इधर सुनने का अधिकार नहीं है, तुम स्वभाव में अगर कुछ मानते हो कि धर्म और धर्म का कारण है तो सुन, तुम कान खोल करके सुन ले गए, ऐसी बात है नहीं वास्तव में। इससे आत्मा का भवन मैंने परिणमन नहीं बन सकता, इसलिए वे आत्मा के मोक्ष के कारण नहीं होते, इसलिए वे आत्मा के मोक्ष के कारण नहीं होते, फिर आत्मा का किंचित लाभ का कारण भी नहीं होते। ज्ञान आत्म स्वभावी है, क्या ज्ञान है? देखो ज्ञान का राग आत्म स्वभावी नहीं है, लेकिन ज्ञान आत्म स्वभावी है, इसलिए उसके भवन से परिणमन से आत्मा का भवन मैंने परिणमन बनता है। शर्त उतनी है कि ज्ञान में अपनत्व होना चाहिए, वो आत्म स्वभावी है, उसमें अपनत्व होने से उसमें स्वभाव का परिणमन प्रकट हो जाएगा। अतः आत्मा के मोक्ष का कारण होता है, इसलिए ज्ञान आत्मा के मोक्ष का कारण होता है, इस प्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्ष हेतु है। उस प्रकार से ज्ञान को ही वास्तविक मोक्ष हेतु कहने में आया है।
ज्ञान में आत्मा को करना तो उसे कहां नहीं करना
है,
ज्ञान में आत्मा जो करेगा तो आत्म स्वाभाविक होगा,
बस अज्ञान को छोड़कर कहीं भी नहीं करना। शुभ शुभ और कुटुंब परिवार शरीर देह यहाँ से लेकर के कहीं भी नहीं करना, नहीं करने की नहीं करना,
नहीं होगा
नहीं, वो भगवान में करेंगे तो अभी नहीं होगा। तो कहते हैं कि तुम मेरी तो मानता नहीं और मेरे को छोड़ता है, मेरी मानता नहीं और मेरे को छोड़ता है, कैसा भी कहता, कैसा विचित्र आदमी है, तो
नहीं
कहेगा, हाँ परेशान करने की बात हो जाएगी। उसकी आज्ञा को मानना वही भगवान को मानना है, उसकी आज्ञा को मानना नहीं और भगवान भगवान करते रहना, ये बात ठीक नहीं है। तो 108 नंबर का कलश ले, सब सादा है, उसका टोटल है 108 में, इसका टोटल है 8 में। मोक्ष हेतु तिरोधानात बंध हेतु बंध हेतुत्वात स्वयमेव च, मोक्ष हेतु तिरोध्याय भावत्वात तत् निषिध्यते।
108 श्लोक,
श्लोकार्थ, कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है। कैसा है शुभ कर्म? जितने भी शुभ भाव है, शुभ राग है, ये मोक्ष के कारणों को तिरोधान करने वाला है। तिरोधान करना मैंने क्या, उसको रोक देना, उसका घातक बनना। इसलिए राजमल जी ने इस कलश की टीका करते हुए ऐसा प्रश्न उठाया है कि जिस तरह अशुभ भाव आत्मा को नुकसान करता है, तो शुभ भाव तो उतना कहीं आत्मा को नुकसान नहीं करता है, इसलिए उसको नहीं छोड़ना चाहिए,
ऐसा प्रश्न उठाया है।
तो कि नहीं, जितना शुभ भाव आत्मा को नुकसान करता है ठीक उतना ही शुभ भाव आत्मा को नुकसान करता है। इसलिए वे कैसे हैं कि दुष्ट हैं। क्या बोले हैं? क्या क्या शब्द लगा है? दुष्ट है, आत्मा का अनिष्ट करने वाला है और घातक है। तीन तीन शब्द लिए हैं, दुष्ट, अनिष्ट और घातक।
ना कुछ तो कम होना चाहिए, कुछ कम होना।
देखो प्रचार करना वो धर्म कहाँ है? प्रचार करना वो कोई धर्म है क्या? धर्म का प्रचार करना वो धर्म नहीं है, वो शुभ भाव है। दूसरे पर प्रभाव पाड़ना ये तो अशुभ भाव है, वो तो शुभ भाव भी नहीं है, ये तो मान पोषण करने का भाव है, अभिमान करने का भाव है। किसी को प्रभाव पर, किसी के पर हमको प्रभाव भी डालना नहीं है, प्रभाव भी पाड़ना नहीं है, ये दूसरी बात है। लाइन ही सूरी सारी दूसरी है। दूसरे पर प्रभाव पाड़ना, दूसरों को धर्म समझाना, ये धर्म का स्वरूप नहीं है।
ऐसे पाप हो गया और
अभिमान हो गए तो पाप ही हो गए, और क्या हो गए? प्रभाव डालने की बात हो तो पाप हो जाएगा। प्रभाव दिखाना, प्रभाव डालना, प्रभाव पाड़ना,
ये तो एक क्षेत्र में है, मान
कषाय
का काम।
वो तो मान कषाय पोषण, पड़ जाए तो पड़ जाए, हमें क्या लेना देना। इससे हमें कोई हमारा मान पोषण करना नहीं है। पड़ जाए तो पड़ जाए, जिसके पर पड़ जाए वो जाने, इसके वो जाने, हमें कुछ इससे लेना देना नहीं है। क्या प्रभाव पाड़ करके कोई अपेक्षा रखनी है इससे?
नहीं है।
इससे कोई अपेक्षा रखने का ये मार्ग नहीं है, ऐसी बात है। इसमें प्रभाव वाली बात क्या आया? तो किसका प्रभाव किसके पर हुआ? कि गुरुदेव का प्रभाव हुआ। तो गुरुदेव ने बोला कि मेरा प्रभाव हुआ है?
नहीं
है, मेरे प्रभाव से ऐसा हुआ, बोला ऐसा बोले गए। इसके उपादान से इनके पुरुषार्थ की प्रशंसा किया गुरुदेव ने, क्या किया? इसके पुरुषार्थ की प्रशंसा किया, अपने प्रभाव की प्रशंसा नहीं किया। किया कभी?
नहीं, कभी नहीं,
नहीं किया। हाँ तो प्रशंसा उसका उपादान के किया ने, अपनी तो नहीं किया ने,
और अपने को तो छोटा बनाया, अपने को तो छोटा कर दिया।
देखो ये छोटा बड़े की कल्पना ज्ञानियों को कभी नहीं होती, मान अपमान की कल्पना ज्ञानियों को कभी नहीं होती, ऐसी बात है। वो इससे परे हैं, मान अपमान से छूट गए हैं और उसको परे हो गए हैं, उसको कोई वो अपेक्षा लागू पड़ती नहीं है। छोटे बड़े की अपेक्षा ही लागू नहीं होती, जो जितने गुणवान है उतने गुणवान बताएंगे उसको, ये वस्तु का स्वरूप है। और ज्ञान का स्वभाव जैसा नहीं हो ऐसा जानने का है, हिनादिक जानने का नहीं है। यही गुरुदेव के दो बात बनी है सुभयानी जी के विषय में। जब हमने वो किताब बनाया तो गुरुदेव के दस्तखत लेने को गए, इसके विषय में कुछ लिख दो आप, गए थे लालचंद भाई, गए थे तो लिख के दिया, लिख के दिया तो उसने ही लिखा था कि आत्मा के स्वभाव के संस्कार लेके इधर से गए हैं। तो हम तो ज्ञानी मानते थे, और वो प्रसिद्ध नहीं थे उतने, गुरुदेव भी परिचय में नहीं आए थे आपस दोनों में, तो ज्यादा नहीं लिखा। तो गुरुदेव को तो सब पता था, थोड़ा हमने संकेत तो कर दिया था, इसलिए पता था कि हम क्या मानते हैं, और क्या वो उसका संपादन किया हम लोगों ने। तो गुरुदेव के ज्ञान में नहीं आवे तो वो क्या बोले, क्या कहें?
इतना आवे इतना कहें।
तो जब लालचंद भाई पढ़ते थे तो उसके मुखाकृति से पता चल गया कि उनको कम पड़ता है, हमने जो दिया है वो
कम पड़ता है,
बोल तो सके नहीं, महाराज ये कम पड़ता है गुरुदेव, तो हमको कम पड़ता है, ऐसा तो नहीं बोले, लेकिन बिना बोले भाव को पकड़ लिया हाँ, और उतना स्पष्टीकरण दिया कि देखो हम तो ज्ञान में जितनी बात आएगी उतनी कहेंगे, न ज्यादा बताएंगे न कम बताएंगे। और ये प्रमाण ज्ञान का स्वभाव है, क्या प्रमाण ज्ञान का वो स्वभाव है कि जितना ज्ञान में दिखे उतना कहे, इना दिख बोले
नहीं।
वही गुरुदेव ने जब अक्षर देह से परिचय हुआ, उनके भावों का आत्मा का परिचय हुआ कैसे, योग्यता का अक्षर देह से, बोले वो हो ये तो गजब बात है, हमारे पहले चले जाएंगे ऐसी बात है। वो अपना स्टेटमेंट को बदला के नहीं बदला, तो जैसा ज्ञान में आता है वैसा कहते हैं,
कोई आपको कुछ नहीं है उनको,
नहीं कुछ नहीं, आगे पीछे के कोई बात लेना नहीं है, ऐसी बात है।
ये मान लेंगे मैंने पहले क्या कहा था, आप क्या
नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है उसका, जैसा ज्ञान में जब आता है वैसा ही कहते हैं, ऐसी बात है। कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है, कर्म है शुभाव रूप कर्म है, क्रिया कांड है, ये मोक्ष का कारण को उत्पन्न नहीं होने देता, इसलिए इसका गला घोंटता है। क्या होता है,
गला घोंटता है,
इसका कोई गला दबा देता है घोंट देता है तो मर जाता है। ऐसे ये जो आत्मा का जीवन है, क्या है
जीवन,
जो स्वभाव का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मे के सुख शांति का जो परिणाम है, आत्म शांति का जो परिणाम है, इसका गला कौन घोंटता है, कि कर्म जो शुभ कर्म है वो इसका गला घोंट देता है, ऐसा कहते हैं इसलिए वो उत्पन्न होने देता है नहीं। इसलिए कड़क लिखा है कि पक्षपात थोड़ा भी नहीं रह जाए, क्योंकि आचार्य महाराज ने तो पक्षपात छोड़ाया है, अनादि से संसारी जीव को पुण्य का पक्षपात है, वो अग्रहित मिथ्यात है, कैसा है वो किसी ने ग्रहित नहीं करवाया नहीं, उसमें बुद्धि नहीं चलाई है, बिना बुद्धि चलाए सभी संसारी मिथ्या दृष्टि जीवों को अग्रहित मिथ्यात्मक रूप में शुभ का पुण्य का पक्षपात रहता है। अब देख लो सारी दुनिया को, नाप लो उसे, पता चल जाएगा कि सब ऐसे ही दुनिया चलती है, ये मोक्ष का मार्ग कोई दूसरा है। तो कहते हैं कि वो स्वयं ही बंध स्वरूप है, वो स्वयं आश्रव स्वरूप भी है, इससे पुण्याश्रव भी होता है और पुण्य बंध भी होता है, तो बंध और मोक्ष तो प्रतिपक्ष में है, विरुद्ध है बिल्कुल, इसलिए जिससे बंध होवे इससे मोक्ष होवे, ये बात तो बिल्कुल न्याय संपन्न भी बुद्धि में आ सकती नहीं है। तो जिसको इतनी भी बुद्धि नहीं चलती है वो तत्व को क्या जानते हैं, वो तत्व को कुछ जानते हैं नहीं है। तथा मोक्ष के कारणों का तिरोधायी स्वरूप होने से, मोक्ष के कारणों का तिरोभाई तिरोधायी भाव स्वरूप है, मैंने उसको आच्छादित करने वाला है, मारने वाला है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। क्यों निषेध किया गया है, फालतू का निषेध नहीं किया गया, वो मोक्ष के कारण को रोक देता है, मार देता है, इसलिए हम इसका निषेध करता है। तो देखो जो हमारे भगवान हैं वो कितना शुभ भाव करते हैं, तीर्थंकर देव कोई शुभ भाव करते हैं
नहीं,
सिद्ध भगवान कोई शुभ भाव करते हैं
नहीं,
कि जो मोक्ष में गए द्रव्य से और भाव से, सिद्ध भगवान द्रव्य से भी मोक्ष हो गया, द्रव्य मोक्ष हो गया, और तेरहवें गुण स्थान में तो भाव मोक्ष हो जाता है, तो जिसको मोक्ष हो जाता है वो कोई शुभ भाव करते हैं कि नहीं करते हैं,
बिल्कुल नहीं करते,
जो नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, करने लायक नहीं करने लायक है इसलिए नहीं करते हैं, या करने लायक है नहीं करते हैं,
नहीं करने लायक,
सीधी सादी बात है, न्याय संपन्न बात है, अगर करने लायक होते तो वो भी करते, नहीं करते इसका मतलब वो करने लायक नहीं थे इसलिए नहीं किए। मुनि दशा में जब पंच महाव्रत पालन करते थे तो उत्कृष्ट शुभ भाव होते थे 28 मुर्मू, लेकिन वो बढ़ाए या उसको छोड़ दिया, उस शुभ भाव का वृद्धिगत किया कि उसको कम करके छोड़ दिया, लिखा कि नहीं अपूर्व अवसर में
ઉપવાસ
એટલે કુછ દિન ખાતે થે ઓર કુછ દિન નહીં ખાતે થે તીર્થંકર દેવ કો આહાર હોતા
નહીં આહાર હોતા હી
તીર્થંકર દેવ કો આહાર કેવલ જ્ઞાન હોને કે બાદ આહાર હોતા
નહીં
કિસી કેવલી કો એક ભી કેવલી કો તીર્થંકર કો ભી નહીં હોતા કોઈ કેવલ જ્ઞાની કો આહાર નહીં હોતા और तीर्थंकर देव को तो जन्म से निहार नहीं होता, और ये लोग तो मानते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद भी उनको डायरिया हो गया था। कितने हीन बात लिखी है,
निहार माने
निहार मैंने टट्टी लग जाना, डायरिया हो गया था, मैंने बहुत टट्टी लग गया, एक रोग हो गया तो उसमें खून के खून की टट्टी लग गई, जैसे खून खून बह जाता है टट्टी में, ऐसा हो गया था। तो बहुत विपरीत लिखा है।
कल बात चली थी, हमने तो सुन रखा था कि भगवान के समूह थोड़ा में सात भाव देखते हैं, और जबकि बात यही अनंत भाव देखते हैं, सात भाव तो लिमिटेड हो जाएगा केवल ज्ञान।
नहीं, भगवान को तो अनंत दिखता है, सात दिखता है वो तो कभी किसी को अपना जो व्यतीत हो गए वो दिख जाते हैं, किसी जीव को अपने व्यतीत जो पूर्वभव है उसका ज्ञान हो जाता है, किसको अपनी बात है। भगवान को तो अनंत काल का ज्ञान हो गया है, पर उनको रोग होता, 18 दोष रहित में रोग नहीं, शोक नहीं, आहार नहीं, निंद्रा नहीं, तृषा नहीं, प्रसवेद नहीं, कुछ नहीं होता, वो परम औदारिक परमाणु हो जाते हैं, शरीर के परमाणु भी परम औदारिक बन जाते हैं, वही शकल नहीं रहती, जो शकल संसार अवस्था में है वही शकल
नहीं रहती।
ऐसे 72 के साल में हुआ, 72 के साल में तो ध्यान स्वर्ग निर्वाण पधारे थे, तो शरीर की वृद्धावस्था दिखती होगी ना कि नहीं,
नहीं होते,
नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारे एक भी मूर्ति में न बाल्य अवस्था दिखती है, न युवावस्था दिखती है, न वृद्धावस्था दिखती है, कैसी मूर्ति बनती है, उसमें बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था एक भी अवस्था नहीं दिखेगी आपको। और हमारी जो शकल है अलग अलग हर एक की, ऐसी मुद्रा नहीं रहती, मुख मुद्रा पूरी एक सी है, सभी अरियंतों की एक सी हो जाती है, जितने केवली होते हैं उनकी भी ऐसी हो जाती है, परमाणु बदल जाते पूरे पूरे देह के, तो परम औदारिक हो जाते हैं, इसलिए उनको 18 दोष रहित ऐसे अरियंत को मानना मानने का विधान शास्त्र में आता है, जो उनको दोषी बनाते हैं बताते हैं, उनको अरियंत पद कैसा होता है उसका पता नहीं है, ऐसे ना वो क्या है कि आत्म शांति को व्यक्त बताने के लिए एक प्रैक्टिकल है, प्रयोग है, जैसे कि कोई बच्चा है वो लाल रंग को गुलाबी रंग को नहीं समझता है, तो बच्चा है वो गुलाबी रंग को नहीं समझता है, तो उसको कितना भी रटन करके तैयार कर दो कि गुलाब गुलाबी होता है, गुलाब गुलाबी होता है, लेकिन उनको देखा नहीं है तो पता नहीं है कि कैसा होगा, वो पीले को भी गुलाबी मान लेगा, जब उनको फूल दिखा देंगे गुलाब का कि इसका ऐसा इसका जो कलर है वही गुलाबी कलर है, तो कभी भूलेगा नहीं। ऐसा आत्मशांति आत्मशांति, लेकिन अनादि से अशांति में जो गुजर रहे हैं, ऐसे संसारी जीव ने तो आत्मशांति देखी नहीं, तो आत्मशांति कैसी होगी, वो कल्पना करता है कि कैसी होगी, उसको कल्पना में आती नहीं है क्योंकि अचिंत्य है, वो आत्मशांति कैसी है, अचिंत्य है, चिंतन गोचर नहीं होती
है,
अकल्पनीय है, कल्पना गोचर नहीं होती है, चिंतन गोचर नहीं होती है। भगवान की मूर्ति से बताते हैं, देख ऐसे शांति होती है, तुझे कोई एहसास आता है क्या? ऐसा है
हम तो कभी दुखी होते हैं तो हमें दुखी दिखते हैं, हम तो कभी दुखी भी होते हैं,
हाँ तो अपनी तो अपनी नजर गलत है, भगवान की कल्पना कैसे भी कर लेंगे अपन, वो बात ठीक नहीं है, वो सही बात नहीं।
ध्यान में बैठे तो पीछे का मंडल था, ध्यान में बैठे तो पीछे का मंडल था, श्रेणी मानी तो पीछे का मंडल नीचे रह गया, ऊपर 500
ध्यान में बैठे हैं तो पीछे का मंडल सबको होता है ऐसा भी नहीं है, ये तो एक चिन्ह बताए हैं, क्योंकि कई ऐसे मुनि हैं लब्धिधारी होते हैं जिसको पीछे कमंडल नहीं होता, वो चलते ही जमीन पर चलते हैं, जमीन से ऊपर चलते हैं, तो उनको तो बैठना उठने का सवाल नहीं होता कि पीछे में लगा ले, ऐसे लब्धिधारी होते हैं, सोच नहीं होता, कमंडल की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं रखे। भरत महाराज ने पीछे कमंडल साथ में रखा क्या क्या करे, वो तो सीधा ही श्रेणी लगा दिया
पांच में से लगे रहे साथ में।
सीधा जिसको केवल ज्ञान होता है वो आकाश में 500 धनुष ऊंचे उसका स्थान हो जाता है, तो अगर पीछे कमंडल जिसको है वो नहीं, वो जमीन पर पड़ा रहता और भगवान ऊपर चले जाते हैं, तो उपकरण भी साथ में रखने की बात नहीं है, भगवान को
जरूरी नहीं है उपकरण साथ में
होंगे, नहीं वो उपकरण से पार हो गए, इनकी दशा हो गई उपकरण से, साधक दशा से पार हो गए, ये सब साधक दशा का चिन्ह है, वो भी मैक्सिमम, इससे ज्यादा होना नहीं,
ये तो बहुत बड़ी बात है, समाज में ये भी नहीं माने लोगों को कि महावीर भगवान है, इसमें तीर्थंकर है, सिद्ध है, तीर्थंकर ही
अच्छा
ये हालत है
बहुत अंधेरा है,
बहुत अंधेरा
है समाज, इसलिए तो आप समझाते थे सबको ये अंधेरा है, अंधेरा
मनी वाले का,
हाँ तो सत्संग से सब पता चलता है, सत्संग बिना ऐसे सब बात का खुलासा
नहीं होता
है, ऐसी बात है
यहाँ।